पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरवद्विषे हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका राधाकान्त नमस्तुते कञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी जिषभानुसुते देवि हनुमान् आदेविका भरगदगदयाद्यवाचा जाचेन कत्तपूरिदण्डवतमुद्भटार्ति अस्य तुषातमबुदस्य जनश्च कृत्वा अङ्गश्यामलिमिच्छताभिरभितो मन्दे कृपेन्दे वरं जट्टं जागुदरोचि साङ्गविदधतं पट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं सुधिलसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितो जलधियं न्यायेन्दामो भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यैः चित्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना हेमस्ते चरणं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो यं प्रव्यजन्तमन्ते समते सुतेभ्यं द्वैपायनो विरहकातर्यायुः पुत्रेति तन्मयतया तर्गोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं त्वैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं मे मां च साधु संघ की महिमा का वर्णन करते हैं। एक साथ में साधु संघ की महिमा का वर्णन हमारे सनातन गोस्वामी ने जिस प्रकार से किया है कब ऐसा बहुत कम जगह में देखा जाता है। साधु संघ की महिमा जो बतला रहे हैं इस पर पूर्ण विश्वास के साथ में सुनो और इस पर अमल करो। तीसरे श्लोक में वो बतला रहे हैं जत से वया भगवता कुटस्थो मधुद्दिश प्रतिराशो भवेत्तीव्र पादयो वसना। इसकी व्याख्या हमने करीब करीब की, थोड़ा सा उसका फल बाकी रह गया। साधारण रूप में इसका अर्थ हुआ है जत से वया भगवता कुटस्थ कुठस्थस्य भगवतस् मधुसूदन मधुद्विश जत सेवया जिनकी सेवा करने से आप जैसे संतों की सेवा करने से परम वैष्णव भागवतों की सेवा करने से आप जैसे मैंने मैत्रेयी जैसे विदुर मैत्रेयी जैसे को कह रहे हैं आप जैसे मैत्रेयी कैसे हैं इनके लिए और विदुर कैसे हैं ये बतलाए। ऋतु जी कैसे भगवान के प्रिय भक्त हैं और मैत्रेय जी कैसे भक्त हैं इसको भी बताया। ये लोग भी सभी मधुर रस के उपासक थे। तो जिन आप जैसे महापुरुषों महाभागवतों की सेवा करने से षडैश्वर्यशाली जो भगवान हैं, जो कुटस्थ जो दुर्भिज्ञ हैं, दूसरों के दुर्भिज्ञ कौन मधुद्विषा मधुसूदन दुर्भिज्ञ कौन कृष्ण स्वयं मधुद्विषा ये दुर्भिज्ञ नंदनंदन रूप में अखिल रसान सिंधु और क्या कृष्ण महाभाव स्वरूप महाभाव और रसराज रसराज स्वरूप जो कृष्ण वो ब्रजेंद्रनंदन रति रासो भवे तीव्र पादे वसनार्दन मतुद्विष जो कृष्ण है उनके चरण कमलों में जो मधुद्विष कुटस्थ हैं कुटस्थ माने कुट के ऊपर में शिखर के रूप में रहने वाले अन्नकूट यहाँ पर जहाँ पर कि अन्नकूट होता है उसकी शिखर अर्थात गोवर्धन की शिखर पर विराजमान रहने वाले वहाँ पर विराजमान किस लिए हैं गोचारण करते हुए सखाओं के साथ में गए हैं और सखाओं को भी वंचित कर प्रमद मदन लीला इत्यादि वहाँ पर विराजमान ऐसे कृष्णचंद्र जी के चरणों में रति रासो उनके रास में रति होती है रास में रति होती है रति होने से भाव रति माने यहाँ पर अनुरक्ति इत्यादि अनुराग ये सब जिससे वह स्वयं भी रास में सेवा करने लगता है कृष्ण इसलिए यहाँ पर रति माने प्रीति पहले तो हुआ उसमें रति माने भाव और इसके बाद में क्रमशः उनमें प्रेम हो करके उस रास रूपी महोत्सव में ये भी स्वयं नियुक्त हो जाता है और उससे क्या होता है पादयो व्यसनार्थन पहले बतलाया रति कैसी होती है व्यसनार्थन भगवान के चरण कमलों में उसकी रति कैसी संसार में जितने भी दुख है आतंक के देखते वो सब दूर हो जाता है और दूसरा बतलाया पादयो व्यसनार्थ भी जब रति रास में ही हो जाता है उसकी हो जाती है तो रास में सम्मिलित होने पर चरण कमलों में जो श्रम होता है उसको भी दूर करने वाला होता है कैसे होता है किसके चरण कमल में परिश्रम होता है जो नित्य करता है और ये नित्य करने वाला चरण कमल किसका है मधुद्विषा कृष्ण का तो कृष्ण के चरण कमलों में जो श्रम हो रहा है नित्य का जो कि अवश्य अवश्य होगा ही तो ये कैसे दूर हो जाता है गोपियों के एक कटाक्ष से ही उनका सब ये दूर हो जाता है ऐसे प्रेममयी कटाक्ष से देखें तो तुम भी इस योग्य हो सकते हो कौन उनके कथा के प्रसंग में यदि तुम्हारा संग हो गया ऐसे महापुरुषों का तो तुम्हारा भी ऐसा होगा जब गोपियों के अनुगत्य में तुम भी कृष्ण के श्रम को अथवा रति रासो पादयो व्यसनार्थ भी तुम्हारे जो चरण रति रास में तुम सम्मिलित होने पर तुम्हारे चरण कमलों में जो दर्द होगा उसको कृष्णचंद्र क्या करेंगे, वैष्णवार्जन उसको कृष्ण ही स्वयं। इस तरह से सनातन गोस्वामी जी ने बतलाया, और भी बतला रहे हैं। कुटस्थो, कुटस्थो मैंने पत्ते सुजात चरणम बरु हम तनेशु भीता सुनई परे दधीम ही कर्कशेशु तेनाटनीम अटसी तद व्यथते नकिंशत कुर्पाद भी भ्रमति अवता। इस श्लोक को ले आकर के और भी सुंदर से सुंदर, मधुर से मधुर अर्थ किए जा सकते हैं। इसको इंगित में समझ करके भजन के बल से हम लोग समझ सकते हैं, इसे अधिक नहीं कहा जाएगा। क्योंकि सित कमला कुछ मंडल हित कुंडल कलित ललित हनुमा जय जय, उसमें भी इसी का है, उसी का तात्पर्य इस श्लोक में भी है। और कृणि कुचे सुना करंद हित स्वयं, इसमें भी यही, तुम्हारे जो जो व्यथा चरणों में है इसको दूर कर ले, दूर कर, दूर हो जाएगा इससे, इससे कृणि कुचे। और कृष्ण भक्ति जन्म मूल है, इस चीज को याद रखो। लाख कोटि करो भगवत भक्ति नहीं होगी, कृष्ण के चरणों में ऐसी भक्ति तो दुर्लभ, तो छोड़ दो, साधारण जो भक्ति है ये भी नहीं होगी। ये कैसे होगा? साधु संग, जिसका साधु संग जितना ही उच्च कोटि का होगा उतना ही उन्नत उसको भक्ति होगी। जिसका हृदय जितना ही उन्नत होगा, ऐसे ही उन्नतियों का ऐसा ही उन्नत साधु संग, अथवा जिनका जितना ही उच्च कोटि का साधु संग होगा उसका हृदय भी वैसे ही, तो दोनों एक। कैसे होगा? जिसका कोई संस्कार नहीं है उनका कैसे होगा इतना उच्च साधु संग? इसलिए पूर्व जन्म के संस्कार, इस जन्म का संस्कार, चेष्टा, उत्कंठा, उसके लिए साधन भजन, यह सब साधु संग से होगा। इसीलिए कहते हैं कपिल देव जी इसी साधु संघ की महिमा के लिए, सतम प्रसंगम दम विरज संविदो भवंतरित कर्णर सायना कथा तज्जो सनातया सुअपवर्गवत्मनि श्रद्धारति भक्ति रनु क्रमिष्यति। सतम प्रसंगम विरज संविदो, साधुओं की सभा में, साधुओं के प्रसंग में ऐसे ही होते हैं। क्या होता है? परस्पर जो कथा बोलते हैं वो कैसी होती है? मम प्रसंगा, हमारे प्रसंग में हमारे बल, वृज्य, तेज, भक्ति, प्रेम इत्यादि के संबंधों की कथाएं होती हैं। वो कैसे होती हैं? वृज्य संबंध बहुत प्रभावशाली होती है, मेरे वृज्य को, मेरे बल को, मेरे प्रभाव के लिए संबित। संबित माने क्या? अर्थात तो उसको अनुभव कराने वाली होती है, सम्यक रूप से वेदन करने वाली, संवेदना युक्त होती है, अनुभूति करा देगी हृदय में। वेदन किसको कहते हैं? अनुभव करा दे, इसको अनुभव करा दे। कौन? वो कथा ही करा दे। जो साधुओं के संग में परस्पर बैठ करके कथयन्ति च रमन्ति च, गीता में भी कहते हैं परस्पर जब मिलते हैं उनकी कथाओं का। ये विदुर और मैत्रेयी जो परस्पर कथाएं जो कहा परस्पर, उसमें भागवत के ऐसे सब सुंदर मधुर प्रसंग आए होंगे कि नहीं होंगे? जरूर आए। इसलिए प्रसंग वस्तुतः इनको यहाँ पर रख करके सुखदेव के गोस्वामी के मुख से ही वो सबको अंत में कहा है, तब दशम स्कंद में, इन लोगों के द्वारा नहीं कहा है, किंतु ये सब प्रसंग उसमें। यदि हम लोगों के इस में ये प्रसंग में ये सब चल रहा है तो वैसे महात्मा जो बहुत उन्नत हैं क्यों नहीं होगा? वो जो मेरे प्रभाव संबंधी, मेरे महात्मा संबंधी जो वृजवती जो कथाएं होती हैं भगवान के प्रसंग में, भवंत रित कर्ण रसायन, वो हरित और कर्ण के लिए रसायन होता है, हृदय में और कानों के लिए रसायन और हृदय में, कानों के लिए भी परम सुखमय और हृदय के लिए भी परम सुखमय होते। पद्योषणात आशु अपवर्त, जिसका सेवन करने से आशु मने शीघ्र ही अपवर्ग वर्तमनी अपवर्ग है जिनके पथ में ऐसी भक्ति, अर्थात तो श्रद्धा से जब हम भक्ति की तरफ में चलते हैं तो भाव जहाँ है भाव के पहले ही वो भाव अपवर्ग उसको मिल जाता है, अवस्था में बिना इच्छा किए हुए अपने आप मिल जाता है। ऐसी जो भक्ति है उसमें श्रद्धा रति और भक्ति अनुक्रमिष्यति, उसमें पहले श्रद्धा, इसके बाद में रति और अंत में भक्ति अनुक्रमिष्यति। अनुक्रमिष्यत माने क्या है? क्रमानुसार में, क्रमानुसार में मैंने इस तरह से श्रद्धा होगी ना, और श्रद्धा में ये साधुओं का संग होता जाएगा, हरिकथा होती जाएगी, ये श्रद्धा निष्ठा के रूप में आ जाएगी। फिर क्रमशः पीछे यही जो निष्ठा है ये क्या हो जाएगी?
रुचि
हो जाएगी, पीछे से ये होगी, और वही रुचि पीछे से जो थी अब वो क्या हो गई? आसक्ति हो गई। वही हरि कथा साधुओं के मुख से सुनते सुनते जहाँ ये आसक्ति है वो अनुक्रमिष्यति क्या होगी? अपने आप कुछ दिनों में ही हो जाएगी, किंतु साधु संग वैसा होता रहना चाहिए। हाँ तो लोभ वाला हो तब, आज जिसको अभी पहले ही श्रद्धा उत्पन्न नहीं है उनको श्रद्धा उत्पन्न, वहाँ रस कहाँ रहे वैदिक भक्ति के? इसलिए साधु संग यदि वैसे साधु लोग हों तो उनके प्रारंभ से ये बात ठीक
है।
रागानुगा के अच्छा अस्य अर्थ, इसका अर्थ वह बतला रहे हैं। हरिते प्रथमतः श्रद्धा, साधु संघ में शतांग संगम वित्तीय संविदे, साधुओं के संघ में जो हरि कथा होती है उसका निरंतर श्रवण करने से आस्वादन करने से पहले होगी श्रद्धा, किंतु इस श्रद्धा में हृतकर्ण रसायन कथा नहीं होगी, होने पर भी ये आस्वादन नहीं कर सकता क्योंकि अभी प्रकृष्ट ये जो है ना प्रसंगान अभी प्रकृष्ट संग नहीं हुआ, संगान ये हुआ। प्रकृष्ट संग कब होगा? जब पहले संग हुआ, इस संग के द्वारा महत्व का संग हुआ, इससे में कृष्ण की सेवा की वासना हृदय में उत्पन्न हुई। अब ये वासना उत्पन्न होने पर जागरणों का पुनः जो संग हुआ उससे क्या हुआ? महत् सेवा आरंभ हुई। महत् सेवा क्या? जैसे गोप कुमार अपने गुरुजी के लिए मैया से दूध लेकर के उसको बड़े प्रेम से लाता, कभी मक्खन ले आता, कभी घोल मट्ठा ले आता उनको खिलाता, कभी सुंदर कोई घर में आसन होता वो आसन उनको दे देता। इस तरह से ये महत् सेवा होना आरंभ किया। इसी तरह से हम लोग भी महतों के प्रति, गुरु के प्रति ऐसे ही सेवा करें। अभी दीक्षा इत्यादि कुछ नहीं हुआ, इसके बाद में महत् वो संग और हरि कथा चलती रही, अब उसके अंदर में श्रद्धा उत्पन्न। अब वो कहा श्रद्धा उत्पन्न से भगवान कैसे मिलेंगे? भाई दीक्षा, हरिनाम दीक्षा इत्यादि, अब उन्हीं पर श्रद्धा मैं आप ही से लूँगा। उन्होंने नहीं कहीं जो जो योग्य है इस पर ले आओ, अजय नहीं अब हम दूसरे से नहीं लेंगे, हम आप ही से लेंगे। इसके बाद में ठीक है अच्छा जाओ जमुना जी स्नान कराओ, बस चोटी रख करके आया और उसको उन्होंने हरिनाम दीक्षा उनको दी। इस तरह से ये श्रद्धा अभी भी हितकरण रसायन कथा नहीं हो रही। इसके बाद में उन्होंने भजन क्रिया कहा, देखो भगवान का ये जो नाम तुमको देते हैं ये करना है, इस मंत्र को जप करना और साथ साथ में भागवत का श्रवण करना और वृंदावन धाम में जाना, उसकी परिक्रमा करना है, गोवर्धन की परिक्रमा करना, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अथवा साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वासी मुक्ति श्रद्धा सकल साधन श्रेष्ठ यही पंचांग कृष्ण प्रेम जन्म यही पंच। इस तरह से उनको कहा जी ये करो। अभी भी वो कथाओं का रसास्वादन नहीं हो रहा, कान में भी अच्छा नहीं लगता, जोर करके पाठ में बैठते हैं, नींद आती है तभी बैठते हैं, अभी लय विक्षेप कषाय प्रतिपत्ति इत्यादि उसी के अंदर में है, अन्यथा धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। जितना ही ये सुनता है धीरे 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 उसमें निष्ठा उत्पन्न हुई, निष्ठा के बाद में अभी संग करते 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 अभी थोड़ी देर के बाद में अब रुचि उत्पन्न हुई। अब रुचि उत्पन्न होने से क्या हुआ, अब कथाओं में कुछ हरि कथा में कुछ कानों को बड़ा प्रिय लगने लगा, अभी हृदय में अनुभूति नहीं कानों में अच्छा लग रहा है। अब यही रुचि जब आसक्ति बढ़ी और आसक्ति से जब भाव होना आरंभ हुआ, अब हृदय में उसका अर्थ बोध हो करके नए नए रूप में रसायन वो कथा हो गया, अब समझ में आने। जैसे मान लें कि कहीं प्रसंग आया कृष्ण के चरण कमलों का, तो कृष्ण चरण के चरण कमलों का या भगवत चरणों का, तब उसको व्याख्या करता, कैसे व्याख्या करता, शांताकारम भुजं शयनम पद्मनाभम सुरेशम, तब उसमें चरण कमल कृष्ण के वो नारायण के कैसे हैं, कोमल कमल कृष्ण। उससे भी यदि नारायण के चरण कमलों की वंदना, बामू महाराज बामदेव जी का चरण कमल कैसा है, जब मापने लगे तो देवता लोग कैसा देखा, हम लोग के समान कैसे दयालु हैं, अपने ठग करके भी स्वयं ठग करके और बलि जी के वशीभूत हो गए, एक साधारण ये पृथ्वी का राज्य और ये सब देखा और जो उनका ही है कैसे दयालु, उनके चरण कमलों की कैसे मानना है। भागवत में ऐसा बतलाया गया, पृथ्वी देवी आप आज बड़ी प्रसन्न हो रही हैं, वराह बपुषा आपने वराह देव जो आप पृथ्वी तल में जल की राशि में घुस गए और चरण कमलों की आपने सेवा की उनकी, इससे आज आपको प्रसन्न हो रही हैं, कहिए ये बात ठीक है, तो आप किस लिए प्रसन्न हो रही हैं। रामचंद्र जी बनवन में गए, खाली फैर गए ना, उनका खड़ा भरत जी ने और राजाई दोनों ले लिया बड़ी चलाकी चतुराई से भरत जी जो थे ना वो जंगल में गए चित्रकूट में और उनसे बोले भैया आप नहीं चलेंगे तो एक बात दे दी, देह राजाई अपने खड़ाऊँ और अपनी रजाई भी दे दी, तुम की रजाई भी मांग ली और खड़ाऊँ भी, ऐसा अर्थ कर रामचंद्र जी खड़ाऊँ ले तो कैसे चलेंगे, पैदल चलेंगे, आप इसीलिए प्रसन्न हो रहे हैं कि आज बहुत दिनों के बाद आपका सौभाग्य है रामचंद्र जी के चरण कमलों का आपने दर्शन किया, उसे स्पर्श हुआ इसलिए बड़ी खुश हैं, नहीं नहीं इसलिए नहीं। और एक क्या बताया, नहीं वो नरकासुर के जिस पृथ्वी जी ये किसके श्वेत बिंदु से वो हुई थी, नरकासुर हुआ था बराह देव, उसी से बराह देव, और दूसरा एक और क्या, बामन देव जी के चरण कमलों के स्पर्श से आप इतने प्रसन्न नहीं, तो किसके किसके, कृष्ण वनमाला अपनी जिसमें तुलसी लगी हुई है मंजरी, उसके कोमल सुगंधित भौंरे उस पर मर रहा है मंजरी और मंद मंद मुरली बजा रहे हैं और किसी चीज को खोज रहे हैं और उसमें अपने सुकोमल चरणों से जिनको गोपियाँ अपने वस्तक्षल पर जिनके चरण का मनो को धारण करती हैं, आज उस चरणों से इस पृथ्वी पर हमारे ऊपर चढ़, इसलिए आकर्षण हो गए। अब देखो चरण कमल के जिस जैसी योग्यता है, जितना अधिकार है, भजन का जितना बल है और जिसका साधु संग जैसा है, हम लोग का सनातन गोस्वामी का यहाँ पर संग हो रहा है, इसलिए सनातन गोस्वामी जी जी जो अर्थ दे रहे हैं हम लोग उसको अर्थ को ग्रहण करके आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए सभी ऐसा नहीं कर सकते। जब तक महत्पुरुषों का संग नहीं होगा हरि कथाओं में, पहले जबकि श्रद्धा निष्ठा रुचि आसक्ति उत्पन्न नहीं होगी तो पहले कर्ण रसायन नहीं होगा। और कर्ण रसायन होने पर जैसे हम लोगों को अच्छे लगते हैं, अनुभूति कुछ हो रही, अनुभूति नहीं हो रही। जिस समय में भाव अवस्था में हम लोग आएंगे, यही भक्ति अनुक्रमिष्यति जब वहाँ पर जाएगी, तब हृदय में तरह तरह के उसके अर्थ आस्वादित हो और तब उसमें हृदय एकदम उत्फुल्ल हो जाएगा।
पहले आस्वादन हो गया, पीछे अनुभूति हो गया।
हैं
अनुभूति तो बाद में, पहले तो आस्वादन है, इसके बाद में
अनुभूति। अगर आस्वादन होने फिर तो वो सब कुछ भूल जाएगा, फिर अब अनुभूति क्या रहेगी? यही तो गड़बड़ है। यहाँ पर तो पूर्व पक्ष किया है,
पहले रसगुल्ला खाएंगे, इसके बाद में मीठा लड्डू।
एक ही शब्द होगा, अजीबा पत होगा।
हाथ आटे तब फिर तो होश ही नहीं रहेगा। यही तो कृष्ण कह रहे हैं उसे, ये कृष्ण भावना में, कृष्ण भावना में ऐसा ही बता है। पहले अनुभूति है कि आश्वासवाद है, कजे इसका निर्णय कोई नहीं कर सकता। इसलिए रसास्वादन कब होगा? जबकि भावावस्था कम से कम, नहीं तो कम से कम आसक्ति के नीचे तय होगा नहीं। अर्थास्वादन, अर्थास्वादन का कुछ होने से भी कर्ण रसायन होने पर हृदय रसायन नहीं होगा। यह परीक्षित महाराज जी को होगा, नारद ऋषि को होगा, देवहूति जी को होगा, या ऐसे ऐसे जो श्रोता हैं, जैसे सुत गोस्वामी ने कहा तो सनक ऋषियों को, और सुखदेव कहेंगे तो सुत गोस्वामी के लिए, व्यास जी कहेंगे तो सुखदेव गोस्वामी के लिए, तब ये कर्ण रसायन। उससे होगा क्या, इसी के लिए बतलाया अनुक्रमिष्यति। अनु माने पीछे, और अनुक्रम माने एक अनुक्रम होता है, एक के बाद एक, और अनु माने पीछे पीछे। एक निष्ठा संग साथ, साथ ही साथ में कुछ दोनों में रुचि हो जाएगी, रुचि हो जाएगी आसक्ति, आसक्ति भाव प्रेम, क्रमशः कितने दिन में बहुत जल्दी हो जाएगी। यदि 10 जन्म में भी हो गया तो समझे बहुत जल्दी। अखंड काल में हम लोग इसमें घूम रहे हैं, अखंड काल से आज तक भक्ति नहीं हुई। कितने कोटि कोटि लोग, कितने अरब खरब अगणित लोग पार हो गए, और हम लोग जहाँ पर इसी जगत में। यदि इस जन्म में चूक गए फिर 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ सकता है। इसलिए आदौ श्रद्धा, महत्पुरुषों में सबसे पहले महत्संग होने से क्या पहले होगा, महत सेवा होगी, महत सेवा के बाद में श्रद्धा, श्रद्धा के बाद में हरि कथा सुनते सुनते रुचि निष्ठा, निष्ठा के बाद में रुचि, और रुचि के साथ में जब हरि कथा होने लगेगी तो कानों के लिए रसायन हो जाएगा, और इसके बाद में रुचि से बढ़ करके जब आसक्ति और भाव आएगा तो फिर उसके भावों को अनुभव करके, हृदयंगम करके, हृदय में भी रसास्वादन होने लग जाए। इसलिए भक्त्या संजात्या, भक्त्या और किसी साधन से नहीं होगा, रुचि पूर्वक भक्ति से नहीं, निष्ठा पूर्वक भक्ति से रुचि, निष्ठापूर्वक रुचि पूर्वक जो भक्ति है इसे फिर आसक्ति पूर्वक हरि कथाओं के श्रवण से, साधनों की सेवा से और भाव से प्रेम होगा। इत्यादि न सर्वत्र वो भक्ति रफी प्रेम फल फलत्व उगते। इसलिए भक्ति से ही भाव, ये तीन चीज है, रति भक्ति श्रद्धा, रति भक्ति अनुयोग। श्रद्धा माने
साधन भक्ति,
साधन भक्ति, और रति भाव भक्ति, और भक्ति माने प्रेम, ये तीनों क्रम। किंतु इसमें बहुत से क्रम रह गए ना, নিষ্ঠা, অনার্থ নিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব, ইয়ে সব রাখবে। এই তরহ সে ইসো সমঝনা চাই। এই তরহ সে ভক্তি কে সাধন সে আর দূসরে কোই চিজ কে সাধন সে নাই হোগা। আর ভক্তি কা সাধন ভি মহৎপুরুষো কে সঙ্গ সেই হোগা। যদি হাম কুছ ভি নাই করতে হ্যাঁ, একদম কুছ নাই কিয়া, কিন্তু সঙ্গ নাই ছোড়া, শ্রদ্ধাপূর্বক উনকে সঙ্গ রে, তো ক্যা করেঙ্গে, এবং মস্ত সিদ্ধির ভাব পশকা দিয়া গো। কল হমনে ইসকা উদাহরণ দে করকে বতায়া। इसमें गोप कुमार जी इन्होंने उन जन शर्मा को जो बतलाया, उन्होंने कोई साधन नहीं किया, बस सुना भक्ति, भक्ति की बात ये उपाख्या। और जब नहीं हुआ उनको प्रेम का उदय, उन्होंने हाथ ऐसे कर दिया, बस सब। इसके सहारे हमको बैठना नहीं है, साधन भजन का हम जो कुछ करते हैं भक्ति के लिए करें, कोई दूसरा हम उसमें न देखें, दूसरी तरफ भूल करके भी अपना सुख, अन्य अभिलाष, ज्ञान, कर्म सब को छोड़ करके इसमें जो लगेगा वो तब फिर इसको होगा। और नहीं, जो भक्ति को और संसार के कर्मों को बराबर मूल्य देता है उसका क्या होगा? वो भी कर्तव्य है, ये भी भक्ति कर्तव्य है। पहले वो कर्तव्य है, तब इसके बाद में ये कर्तव्य, तो क्या होगा? भक्ति ऐसी होगी, ऐसी ब्रज वाली भक्ति नहीं हो, ब्रज में रहते हुए भी ब्रज की भक्ति नहीं हो। उसके लिए संपूर्ण एनर्जी जितनी है सब भक्ति में देनी होगी, तब ऐसा होगा आंसू। और नहीं तो फसल 10-20 हजार लाख को जन्म लग जाएंगे, होगा जरूर। अतः ध्रुवे नापि प्रार्थिता, इसलिए ध्रुव जी प्रार्थना करते हैं सत्संग के लिए, महापुरुषों का संग के लिए ये प्रार्थना करते हैं। क्या करें? भक्ति मुहु प्रवाहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयात अनंत महतां अमलाशयानां येनां यशो उल्वनं कुरु व्यसनं भवाप्तिं निश्चये भगवद्गुणकथामृतपानमप्तः। भक्ति मुहु प्रवाहतां त्वयि मे प्रसंगो, भगवान जब प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप को मारा, दस्तक से चीर दिया और उनकी जटाओं से आकाश एकदम परिव्याप्त हो गया, अग्निमंडल से जलने लगा, सब देवता लोग त्राही त्राही करने लगे, ब्रह्मा शंकर पार्वती जी सभी लोग उनको प्रसन्न करने के लिए, शांत करने के लिए आए, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी उनको शांत। अंत में सब लोगों ने विचार सुना करके प्रहलाद महाराज को कहा, जैसे तुम अपने पिता के क्रोध को शांत करो। उस समय में प्रहलाद जी निर्भीक होकर के, निडर होकर के, छोटे से 5 वर्ष के सुकुमार बच्चे, हिरण्यकश्यप को जब मार डाला तो उनकी कैसी भयंकर स्थिति हुई, और उसी समय में धीरे धीरे जाकर के उनकी गोदी में बैठ गए। एक सिंह जैसे अपने शावक को प्यार से उसका चुंबन करने लगता है, उसको चाटने लगता है, ऐसे प्रहलाद महाराज जी को स्नेह से चाटने लगता और क्रोध उनके आँखों से निकलने लगता है। कैसे? पानी के रूप में एकदम द्रवित हो गया, न जाने कहाँ एक सेकंड के अंदर में उनका क्रोध चल गया और परम शांत होकर के और उनसे कहने लगे, तुम हमारे लिए कुछ, हमारा दर्शन अमोघ है, तुमको रक्षा करने में हमारा विलंब हो गया, बहुत काफ़ी विलंब हो, मैं पहले नहीं आया, इसके लिए तुम बर्बाद। और इसी को देख करके जितने वहाँ पर देवता लोग थे, जम से लेकर के वरुण इत्यादि, दिक्पाल, इंद्र, ब्रह्मा, शंकर, अश्वरा, उरुगण, सब उनकी वंदना करते। उस समय जब इन्होंने कहा जी वर मांगो, तब ये कह रहे हैं, अरे नहीं, अरे तो ध्रुव जी की, ये ध्रुव जी का, ध्रुव जी को कहा जी वर मांगो, तब उन्होंने ये वर मांगा था उनसे। भाई भक्ति मोह प्रभाव, ध्रुव जी राज्य की अभिलाषा से उनकी तपस्या की, बड़ी कठोर तपस्या की, और कितने दिन में? 6 महीने में ही भगवान, कौन से भगवान आए उनको दर्शन देने के लिए? हैं,
चतुर्भुज
नारायण, कौन से नारायण? बैकुंठ पाली ना, हाँ, कौन? कर्णाद्य साई के जो अंश गर्भोदशाई हैं, गर्भोदशाई सहस्त्र शीर्षा तो सुना चौबती ठाकुर जी ने, और मूल श्लोक में भी है सहस्त्र शीर्षा प्रभु जो हृदय में अंतर्जामी रूप हैं उनके जो मुंह हैं वो उनको प्रकट होकर के उन्हीं को हरि भी कहते हैं। उनके भी मुंह सहस्त्र शीर्षा बतलाए तो वही कहते हैं भक्ति मुह मुह माने निरंतर प्रवाहित हो त्वयि मे प्रसंगो अर्थात हे अनंत आपकी लीलाएं अनंत हैं। किनके लिए कह रहे हैं? गर्भदशाई के लिए आपकी लीलाएं अनंत हैं। समस्त अमल आशय समस्त अमल व्यक्ति जो हैं जिनका हृदय निर्मल है काम इत्यादि जिसके हृदय में नहीं है अनर्थ नहीं है ऐसे संत महापुरुषों के चरणों की हृदय में आप विशुद्ध रूप से आप यहाँ पर वास करते हैं विश्राम करते हैं। भगवान किसके हृदय में वास करते हैं और विश्राम करते हैं? विषयी लोगों के अंदर में नहीं, क्योंकि उनके अंदर में कामनाएँ तरह तरह की होती हैं, वहाँ पर विश्राम नहीं करते। जैसे हम लोगों के कोई एक गाँव में कोई साधु पहुँच जाए भगवत भक्त, तो कोई लड़के के लिए, कोई लड़की की शादी के लिए, कोई रोग के लिए, कोई कुछ चीज़ के लिए, कोई अनर्थ के लिए, सब लोग उसको तंग करेंगे, भजन नहीं करने देंगे, बड़ा मुश्किल है उसको। इसलिए उसको या तो ठग करके लोगों से वंचित करना पड़ेगा, मैं साधु नहीं हूँ इस रूप में रहना पड़ेगा, और नहीं तो गाली गलौज कर करके इधर से उधर कर करके अपने को छिपाना पड़ेगा, नहीं तो भजन ही नहीं कर सकता। इसलिए अमल आशय जिनके हृदय में कोई भी कामना वासना नहीं है कृष्ण भक्त निष्काम पते व शांत सकल है, इसलिए भगवान वहीं पर भी निवास करते हैं विश्राम लाकर जिनके हृदय में कोई कामना नहीं तो बार बार उनको तंग करेगा मुझको ये चाहिए मुझको ये चाहिए मुझको ये चाहिए। विशुद्ध चित्त महापुरुष आपके प्रति सतत भक्ति करते हैं निरंतर तय धारावत अविच्छिन्न गति से आपके चरणों में भक्ति करते हैं। उसके पहले वो बतलाया है कि कैसी वो कैसी भक्ति करते हैं, मई गुणस्तुति मात्रे न सर्वगुहाशय अविच्छिन्न गंगा का पानी तैल धारावत एकदम समुद्र से चलता है कहीं बीच में रुकता नहीं। ऐसे ही ऐसे महात्माओं का चित्त सब समय भगवान के चरणों में निरंतर लगा रहता है स्वाभाविक रूप से अपने आप अविच्छिन्न गति से ऐसी सतत भक्ति करते हैं। लक्षणम भक्ति जो वश्य ही निर्गुण समुदाहितम अहेतुक्य अव्यवहिता ऐसे ही अहेतुकी यदि हेतुक होगा तो बंद हो जाएगा। इसे भगवत भक्ति जो होगी वो कैसी अहेतुक जिनके हृदय में भक्ति है ऐसे लोग जो सतत आपकी भक्ति करते हैं आपकी कथा श्रवण में ही जिनका जिनके संग का प्रकृष्ट फल है ऐसे महापुरुषों का संग ही हम लोगों के लिए एकमात्र सहारा है और प्रार्थनीय है। तो वही ध्रुव जी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं जिनके हृदय में आपके प्रति अमल निर्मल और सदा बहने वाली निरीक्षण गति से भक्ति है ऐसे महापुरुषों का संग हमको दे। यदि कहते हैं कि तृतीय पुरुषार्थ मोक्ष क्यों नहीं मांगा जो ऐसे महापुरुषों का संग माना नहीं उनके साथ में जो होगी भगवान की ब्रजवती कथाएं जो कृष्ण के चरणों में पहले श्रद्धा तब भाव भक्ति और अंत में प्रेमा भक्ति देती है और कृष्ण से कैसा संबंध करा देती है रति रासो भवेत्तिव्र ऐसी भक्ति करा देती है। ऐसे अमलाशय जो महात्मा हैं उनके चरणों कमल में हम पहुंचने से ऐसी हरि कथा सुनेंगे। किनके मुख से हरि कथा सुनेंगे? ऐसे कोई कनिष्ठ से अनर्थग्रस्त जीवों के हृदय में ये सब काम नए भर पड़े उनसे ऐसे महापुरुषों के सामने अंततः रागानुगा का भाव जिनके हृदय लो मई भक्ति कहे किसलिए प्रार्थना कर रहे हो तुम मुक्त के लिए क्यों नहीं प्रार्थना किया? संसार का दुख बहुत भयानक है। हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, गृहस्थ लोग और सब दुखों को दूर करने के लिए वाणिज्य व्यवसाय नौकरी चाकरी ठगना। आजकल देखिए तो कितनी सुंदर राजनीति हमारे यहाँ भारतवर्ष में चल रही है, उत्तर प्रदेश में कितना निर्मल राजनीति है, उछाड़ पटक ये सब चल रहे हैं। ऐसी बेईमानी, ऐसा माने कपटता, छल प्रछन्न, हिंसा कहीं नहीं विश्व में, इतना ये सब चल रहा है। इसलिए कहते हैं ऐसे मोक्ष क्यों नहीं चाहता करें? भक्ति का अनुसंगिक फल जो मोक्ष है ये रास्ते में पड़ जाता है। मैं जा रहा था भक्ति प्रदेश में और बीच में मैं पड़ गया कौन सा स्थान? मुक्ति का प्रदेश पड़ गया। अपने आप जा रहा था मैं स्टेशन पर रेल पर चढ़ करके कहीं कलकत्ता जाने के लिए, और सुंदर एक बगीचा आम का था, मालदही बगीचा, और उसमें पेड़ की डालों में हजारों पके पके लाल लाल टेसू जैसे रस भरे पड़े हैं। उस पर कोयल बैठी हुई है, कोपिल ने डाल हिला दी या सुख पक्षी ने, तो क्या हुआ वो अपने आप वो गिर गया। मैं जा रहा था, मैंने उठाया और उसको, हमारा जाने का तो था वहाँ स्टेशन पर, किंतु बीच में आम जब मिल गया तो उसको क्या किया, चस लिया। तो यह अनुसंगिक फल, उसी प्रकार से ये भक्ति ऐसी चीज़ है जो मुक्ति बिना मांगे आए बरियाई। बरियाई माने क्या? जबरदस्ती। मुक्ति भुक्ति और ये सब जोग के जितने भी फल आ जाते हैं, किंतु हम लोगों का ऐसा विश्वास नहीं, इसलिए भक्ति नहीं करते। जिस दिन ये सब छोड़ करके जब करेंगे ना, कहते हैं जी हमारा चलेगा कैसा, दुकान नहीं चलाएंगे तो, हम ये वाणिज्य व्यवसाय नहीं करेंगे तो चलेगा कैसे, हम वकालत नहीं करेंगे तो चलेगा कैसे, हम नौकरी नहीं करेंगे तो चलेगा कैसे, हम घर नहीं ये सब ठीक करेंगे तो कैसे चलेगा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हमारा देखो तो हमारा कैसे चलता है। नारद जी कहते हैं जी हमारा देखो तो कैसे चलता है। महाप्रभु जी ने कहा जी हमारा जैसा देखो तो कैसा चला, हमारा कैसे चला। विश्व उनके चरणों में गिर जाता है। आज एक यहाँ के बड़े भारी विद्वान आदमी आए, पहले प्रिंसिपल थे गवर्नमेंट कॉलेज में, बोले जैसे हमारे चार लड़कियाँ एक लड़की है, लड़की की शादी में बहुत मुश्किल से बहुत हजारों रुपया खर्च किया इधर, और मैं चारों तरफ से हार गया, अब मैं आपके पास में पहुँचा। आप मैंने भाई मैं क्या कहूँ, जो तो मैं कहूँगा तो आप करेंगे नहीं? ना नहीं जरूर करूँगा। तम तो कहते हैं एकमात्र भक्ति करने से, जबकि विश्व ब्रह्मांड भी जितने भी कष्ट और जो सब कुछ सूख जाता है और गोष्पत की तरह में सबको पार कर जाता है, मुक्ति अनिच्छुक रहने पर भी मिल जाती है और कृष्ण उसके वशीभूत हो जाते हैं, तो ये काम उससे नहीं होगा कि होगा? किंतु लोगों को विश्वास, हमने कहा भाई गोवर्धन में जाओ, उनकी परिक्रमा करो, उनसे संकल्प करो, उनकी सेवा करो, उनका भजन करो, इसके अतिरिक्त हम लोगों के पास में कुछ नहीं है। उन्होंने कहा जी यही आपने जो कहा ये हमारे लिए सर, तो ठीक है जाओ तुम्हारा फल। लोग भक्ति नहीं चाहते। सेकंड तो उनका एनर्जी कैसे देंगे, वो नहीं दे पाते हैं। इसलिए भागवत केवल सुखदेव और गोस्वामी और इनका केवल संवाद परीक्षित महाराज जी का नहीं है, पूर्व पूर्व एतत् निर्विद्यमानानां इच्छताम अकुतो भयम्, उनसे बहुत पहले सृष्टि के प्रारंभ से ही, उसके अगली सृष्टि से, पहली वाली सृष्टि से ही ये साधु के द्वारा निर्णित विचार है। भक्ति के द्वारा ही उमेव कीर्तन संकीर्तन भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। एतत् निर्विद्यमानानां इच्छताम अकुतो भयम्, यदि कुछ चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते, भक्ति चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, शुद्धा भक्ति चाहते हैं, प्रेमा भक्ति चाहते हैं, ब्रज भक्ति चाहते हैं, तो क्या करो, नाम संकीर्तन, इसी के द्वारा सब कुछ तुमको मिल जाएगा। किंतु लोगों को विश्वास नहीं होता है। हम लोगों ने कभी सोचा था, जैसे संसार हमने सोचा था संसार छोड़ करके जाएंगे और एक हिमालय की में कहीं एक कंदरे में रह करके नंग टेरा करके भजन करेंगे, वो कहेंगे अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि, ये सब सोच रहे थे। বাউ জায়গা খোঁজতে 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 ভাগ্যবাস কুছ করব যে আমার কাজ করতে ঠিক ইয়ে লোক মিলবে। উনোনে হাম লোক ইস কাম মে লগা দিয়ে যে ঠিক হ্যাঁ কবি সোচা থা যে 50 পঙ্খে চল রে হোগে আর মথুরাকে জিতনে আচ্ছে বড়ে বড়ে বিদ্বান ধনী গরিব সব লোক ইহা আয়েঙ্গে শুনেঙ্গে। বিশ্বকে জিতনা এসা কই রাষ্ট্র নেই যাহা সে লোক নেই আতে হরি কথা শুননে কে লিয়ে ইয়ে সব হোগা এসা কবি কল্পনা হম লোকনে। इस भक्ति के द्वारा जरूर सब कुछ हो जाएगा। इस चीज़ को समझ करके जो भक्ति में होगा उसको कोई कष्ट नहीं हो सकता है। इसी के लिए ध्रुव जी कह रहे हैं जो ऐसी भक्ति करते हैं ऐसे भक्तों का संग हमें मिले उस संग से क्या होगा भक्ति अनुकर्मिष्यति और रति रासो कुटस्थो कुटस्थो मधु दिशा रति रासो भवति ये सहज रूप में हो जाएगा। इसलिए ध्रुव महाराज जी ने कहा जे ओ प्रभो यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमको यही दीजिए क्या आपकी चरणों की सेवा आपकी गुण गाथा करने वाले उसमें प्रमत्त रहने वाले जो महत्पुरुष हैं साधु लोग हैं वही संग हमको वैसे महापुरुषों का संग मिले उसके द्वारा।